राम हरे हरे,
हरे कृष्णा। इस्कान भुज जगन्नाथ मंदिर में रविवार के सायंकाल के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबको आवाज पीछे सुनने में आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल होली है और होली के दिन कली पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य है, तो गौर पूर्णिमा बोलते हैं। तो आज गौर पूर्णिमा की पूर्व संध्या वेले में हम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के प्रकट्य के विषय में कुछ श्लोकों का और कुछ चैतन्य चरितामृत से पाठ करेंगे। उससे पहले आप सब हमारे साथ प्रेम पूर्वक ये कीर्तन कीजिए। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। नीताय गौरंगा, जय नीताय गौरंगा, 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 नीताय गौरंगा गौर हरि, नीताय गौरंगा गौर हरि, गौर हरि, जय गौर हरि, गौर हरि, जय गौर हरि, कलयुग अवतारी गौर हरि, कल युग अवतारी गौर हरि, पतित पावन गौर हरि, पतित पावन गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, गौर हरि, जय गौर हरि, गौर हरि, जय गौर हरि, ध
हति न ग्वाया गौर हरी जय सचिनंदन गौर हरी जय सचिनंदन गौर हरी गौर हरी जय गौर हरी जय गौर प्रेमानंदे हरी हरी हरि मो
तो कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की कृपा से भुज में कृष्ण भावना अमृत संघ का केंद्र स्थापित हुआ है और भविष्य में भुज का गौरव पश्चिम वृंदावन भव्य दर्शनीय और अद्भुत एक आध्यात्मिक तीर्थ का निर्माण होने जा रहा है। आप सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरणा देकर यहाँ कृष्ण भावना अमृत संघ के साथ संपर्क में आने का कार्य भगवान ने किया है और आप सब यहाँ पधारे हैं। आपका हम कृष्ण भावना अमृत संघ की सेवकों की ओर से स्वागत करते हैं। कृष्ण भावना अमृत संघ आधारित है भगवद गीता यथारूप के ऊपर, शास्त्र के ऊपर आधारित अगर संस्था नहीं है तो वो संस्था प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक संस्था, प्रमाणिक संप्रदाय का पहली पहचान है शास्त्र के ऊपर आधारित होना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा लिखते हैं प्रमाणिक गुरु, और उसकी परिभाषा है शास्त्र के नियम में शिक्षा देने वाला गुरु। प्रमाणिक की परिभाषा है ये। और श्रीमद् भगवद गीता उसके ऊपर आधारित है ये कृष्ण भावना अमृत संघ, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के ऊपर। और भगवद गीता की शिक्षा प्रारंभिक तो आध्यात्मिक शिक्षा है, ये प्रारंभिक शिक्षा है। और आगे की कक्षा में भगवद गीता में तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान के वचन हैं, भगवान क्या करते हैं अगर हम जानना चाहें कि भगवान क्या करते हैं, भगवान की लीला क्या है, तो भागवत का श्रवण वर्णन करना पड़ेगा। तो कृष्ण भावना अमृत संघ केंद्र में प्रातः श्रीमद् भागवत के ऊपर सत्संग होता है, क्योंकि थोड़े भक्त होते हैं जो बहुत गंभीर हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मानव जन्म की सफलता के लिए, जिनका सीरियस और कमिटेड जो है, जिन्होंने निर्णय कर लिया है कि मानव जन्म में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, ये दुर्लभ और अवसर, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो प्रातः काल में श्रीमद् भागवत का सत्संग 8 से 9 बजे तक सारे विश्व के कृष्ण भावना अमृत संघ केंद्रों में होता है। सायंकाल को सामान्य लोगों को आध्यात्मिकता में अग्रसर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भगवद गीता का सत्संग होता है। वर्ष में एक बार ये होली के उत्सव से पूर्व एक और विषय भी आगे आ जाता है, भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता, भगवान क्या करते हैं श्रीमद् भागवत, भगवान क्या सोचते हैं, भगवान का क्या विचार है, उनके मन में क्या है, इसका उल्लेख है श्री चैतन्य चरितामृत में। तो श्री चैतन्य चरितामृत ये तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, बहुत ऊपर के स्तर का शास्त्र है जिसमें भगवान क्या सोचते हैं। तो गौर पूर्णिमा, ये जो होली की पूर्णिमा है, इसके साथ भारत की संस्कृति में प्रहलाद महाराज की रक्षा भी जुड़ी हुई है। होलिका दहन का मतलब होलिका जल गई, प्रहलाद की रक्षा हो गई। भगवान नरसिंहदेव भक्त वत्सल है, प्रहलाद महाराज भक्त की रक्षा हुई, ये भी इससे साथ जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन में होली की लीलाएं गोपियों के संग वो भी बहुत प्रसिद्ध है। होली खेलना ब्रज के अंदर बहुत प्रसिद्ध है। ये रंगारंगी त्योहार है बहुत बड़ा, और साथ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का 525 एक साल पहले प्रकट्य संभवतः इसी काल में हुआ है। तो गौर पूर्णिमा, होली के दिन गौर पूर्णिमा होती है, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के दो कारण हैं। पहले तो श्री कृष्ण भगवान ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलिकाल में आए, दूसरा भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार के एक बाहरंग कारण है, जिसका मतलब प्रचार का क्या उनका उद्देश्य था, और अंतरंग कारण है कि उनके अंदर में क्या भाव था इसके लिए वो प्रकट हुए। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के बाहर अंग अवतार के कारणों का थोड़ा सा श्रवण करेंगे। पहले श्लोक में कविराज गोस्वामी लिखते हैं, श्री चैतन्य प्रभु वंदे, हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? यत पद आश्रय वीर्यतः, उनके चरणों का शरण ले, यद पद आश्रय, पद का मतलब चरण, आश्रय का मतलब शरण लें, अगर कोई उनके चरणों का शरण लेता है तो उसके अंदर वीर्यतः अद्भुत शक्ति का संचार हो जाता है। कैसी शक्ति का संचार हो जा सकता है? जैसे प्रभुपाद जी महाराज अपने साथ चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेके 70 साल की अवस्था में भी अमेरिका गए तो उनकी इतनी शक्ति का प्रभाव हुआ कि पूरे विश्व के अंदर देश विदेश में हरे कृष्ण महामंत्र, सनातन धर्म और इतना बड़ा अद्भुत एक आंदोलन स्थापित हो गया। कितनी बड़ी शक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण का शरण लेने से विशेष शक्ति आती है। बोलो उस शक्ति से क्या होता है? अगर वो शक्ति आपके अंदर आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं? तो कहते हैं संग्रहेणाकार व्रतात्। आकार व्रतात्, व्रतात् का अर्थ है ये जो खान होती है जिसके अंदर सोना चांदी निकलता है, खनिज निकलता है, जिसको खान, क्या कहते हैं खान को? खान। तो खान, शास्त्रों की खान के अंदर से क्या ला सकता है? अज्ञ सिद्धांत सन मणिम, अज्ञानी है, अनपढ़ है, न जानता है, फिर भी सारे शास्त्रों के सार रूप मणि को शास्त्रों के खान से, खजाने से निकाल के आ सकता है। तो ये बहुत बड़ी चेतना महाप्रभु की कृपा है, कोई उनके चरणों का शरण ले ले तो उनकी शक्ति के प्रभाव से शास्त्रों का सिद्धांत अनजान अनपढ़ व्यक्ति भी अद्भुत रूप से स्थापित कर सकता है। आप यहां गुरु परंपरा में देखते होंगे, पहले प्रभुपाद जी महाराज जिन्होंने स्थापना की इस कान की, उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, भारत के बहुत बड़े भारी विद्वान थे, अंग्रेजी भाषा भी आती थी, संस्कृत भी आती थी, त्रिपुरा के महाराज के गुरु थे, कुल गुरु जैसे उनको शिक्षा वाले गुरु थे। उनके बाद में बैठे हैं गौर किशोर दास महाराज जी, उनके गुरुदेव वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो कोई विद्वान पढ़े लिखे नहीं थे, और उनके शिष्य सबसे ज्यादा उस वक्त के धरती के ऊपर गौड़ीय वैष्णव में विद्वान थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के चरणों का शरण लेने से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास सिद्धांतों की मणि, सारे शास्त्रों का सार, शास्त्रों के खान में से, खजाने में से उन्होंने निकाल के रखा था, इसलिए बहुत बड़े विद्वान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। तो ये पहला एक संस्कृत के श्लोक में कविराज गोस्वामी कहते हैं, और आज आप हमको स्पष्ट बता देते हैं, मानव जन्म का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, बाकी सब चीजें यहां रहने वाली हैं। एक चीज जो हमको वो प्राप्त करनी है वो कृष्ण प्रेम। वो कृष्ण प्रेम कहीं बाहर से लाना नहीं है, वो सब हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण ने पहले से भर के भेजा है। कोई दिल कोई हृदय कृष्ण प्रेम से खाली नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कृष्ण प्रेम सबके हृदय में नहीं होता तो ये पाश्चात्य देश के लोग, अंग्रेज लोग, काले लोग, अफ्रीकन, अमेरिकन, रशियन, ये कृष्ण भक्ति कैसे कर सकते थे? अगर इनके अंदर पहले से कृष्ण प्रेम नहीं होता तो ये भक्त कैसे बन सकते थे? इसका मतलब हमारे सबके अंदर कृष्ण प्रेम पहले से है, उसको जागृत करना है। और जागृत करने का साधन क्या है, उसको जगाने का साधन क्या है, और कैसे जागता है? वैसे जागता है हरि कथा सुनने से, हरि कीर्तन करने से, लेकिन असल में वो जागता है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। चाहे कितने लोग मंदिर बनाएं, पूजा करें, पाठ करें, लेकिन कृष्ण प्रेम कृपा चैतन्य महाप्रभु की करुणा कृपा के बगैर प्रकट नहीं होगा, क्योंकि उनका चमत्कार वो आए ही कृष्ण प्रेम को ही प्रसाद के रूप में वितरण करने के लिए आए हैं, और न जाति पाति को देखते हैं, न ऊंच नीच को देखते हैं, न नारी को पुरुष को देखते हैं। जो भाग्यशाली वो तो एक सुंदर हरि नाम की माला, कृष्ण प्रेम की माला हाथ में लेके खड़े हैं, जो भाग्यशाली आए उसके गले में डाल देते हैं और उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो कृष्ण प्रेम अगर हमारे जीवन का लक्ष्य है तो उसकी प्राप्ति केवल महाप्रभु की कृपा से होगी, और महाप्रभु कृपा करते हैं जिसके ऊपर नित्यानंद प्रभु आशीर्वाद देते हैं, और यहां नित्यानंद प्रभु उसको आशीर्वाद देते हैं जो प्रचार करने के लिए नीच से नीच लोगों के पास भी चला जाता है, दुष्ट के दुष्ट लोगों के पास भी जाता है, पतितों के पास भी चला जाता है उसके ऊपर, क्योंकि उसके हृदय में दया है कि ये लोग दुखी क्यों हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका में हिप्पियों को प्रचार करने के लिए क्यों गए? भारत में बहुत प्रयास किया, यहां के लोग समझते हैं हम पहले से महात्मा हैं। सच पूछो कि भारत में आप सर्वे करके देखो कि गीता पढ़ने वाले 1% भी नहीं मिलेंगे। 1% में बहुत ज्यादा कह रहा हूं, गीता का नित नेम से पाठ करने वाले या गीता को समझने वाले 1% भी नहीं मिलेंगे भारत में। ये सच है कि नहीं? तो शास्त्र को नहीं पढ़ना एक बात, भागवत गीता के आधार पे आपको बता रहे हैं कि दुनिया में दो प्रकार के जीव होते हैं, दो प्रकार की सृष्टि होती है, दो प्रकार के इंसान होते हैं। एक को देवी संपदा का कहते हैं, एक को असुरी संपदा का कहते हैं। देवी संपदा, संपदा मतलब धन, मतलब देवी गुण जिसके अंदर है, देवताओं जैसे गुण है, उधार गुण है, जो भला आदमी है, एक तो ऐसे होते हैं, और दूसरे होते हैं असुरी प्रवृत्ति के, जो दूसरों को दुख देने वाले हैं, संकट देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। तो अब आप संसार में इन दोनों का विभाजन कैसे करोगे? कौन असुरी प्रवृत्ति के है, कौन देवी प्रकृति के है, कौन देवताई गुणों वाले हैं और कौन राक्षसी असुरी गुणों वाले हैं, इसका कसौटी क्या है, विभाजन कैसे करेंगे, कौन से कसौटी के ऊपर कस के दोनों को अलग अलग करेंगे कि ये असुर है और ये देवता है, कसौटी क्या है, नापदंड क्या है उसका अलग अलग करने का? भगवद गीता के 16वें अध्याय में एक नापदंड लिखा है, जो शास्त्र के नियमों का पालन करे वो देवताई गुण वाला, और जो शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करे वो असुर। पहला निर्णय ये है। अब आप बताओ कितने लोग शास्त्र के नियम से चल रहे हैं? बहुत कम लोग चल रहे हैं। शास्त्र के विपरीत बहुत लोग चल रहे हैं, तो फिर वो असुरी गुण वालों में आ जाएंगे। असुर का मतलब ये नहीं है कि सींग होंगे, कि दांत बाहर होंगे, कि आंख का बाहर निकल, नहीं, असुर उसकी उसकी प्रकृति होती है, उसका स्वभाव असुरी होता है। तो पहला प्रमाण क्या है असुर और देवता में अलग करने के लिए? शास्त्र। शास्त्र ही हमारा सहारा है। कहते भव सागर को पार करना है तो ये सागर है। सागर को पार करने के लिए नाव चाहिए। ये शरीर, मानव शरीर, बड़ी नाव अच्छी है जो भव सागर को पार कर सकती है। लेकिन आपके पास नाव तो है, लेकिन दो चीजें और चाहिए सागर में चलने के लिए। एक तो चलाने वाला चाहिए, कैप्टन चाहिए, उसको चलाने वाला चाहिए, और दूसरा आपके पास मानचित्र होना चाहिए कि समुद्र में कहां कुन है, कहां पर्वत है, कहां से नहीं जाना है, कहां से जाना है। भाई समुद्र में जाने के लिए भी कहां से जाना चाहिए, कहां से नहीं जाना चाहिए, उसके लिए हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरा GPS का नक्शा होना चाहिए। नक्शा है शास्त्र। शास्त्र नक्शा है, मानचित्र है, और साक्षात पुराने जमाने में नाव चलती थी हवा के सहारे। ऊपर कपड़ा होता था, जहां हवा होती थी उस तरफ जाती थी। और शास्त्र हवा का काम भी देता है, जल्दी से मंजिल पे पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन करता है। तो शास्त्र प्रमाण है, इसलिए पहले तो हमारे बच्चों को शास्त्र की शिक्षा स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती है। अगर हम घर में भी नहीं देंगे तो हम असुरों की ही संसार में वृद्धि कर रहे हैं। तो बच्चों को कैसे ये शिक्षा दी जाए, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। बहुत सी जगहों पे रविवार स्कूल खोल के रखे हैं हमने, कम से कम रविवार को बच्चे छुट्टे हैं 2 घंटे, 1 घंटा हमारे पास भेज दें तो उनको थोड़ी थोड़ी कम से कम शास्त्र की जानकारी और कुछ श्लोक याद करा के, ताकि वो बच्चे उनके अंदर संस्कार हो जाएं। दूसरा क्या प्रमाण है असुर और किसी को देवता कहने के लिए? जो सतोगुण में है वो देवी गुण वाला है, और रजो और तमोगुण में है वो असुरी प्रकृति का है। तो प्रभुपाद जी महाराज ने कहा इस्कान की स्थापना मैं लोगों को सतोगुण में लाने के लिए कर रहा हूं। सतोगुण का मतलब है जिसमें आपको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो, और जिसमें आपका खान पान सात्विक हो, आपका रहन सहन सात्विक हो, सवेले उठने का जीवन में नियम बना ले। रजोगुण की क्या पहचान है? लोभी, लालची और आसक्त। तमोगुण किसको कहते हैं? आलसी और प्रमादी। तीसरा, देव और असुर का विभाजन करने का क्या नापदंड है, क्या कसौटी है? पद्म पुराण में लिखा है विष्णु भक्ता देवता तत विप्रह असुरा। जो भगवान विष्णु के अनुयायी हैं वैष्णव हैं, वो देवता है। जो उसके विपरीत हैं वो असुर हैं। तो देवी गुणों से संपन्न समाज को करने के लिए इस कान की स्थापना हुई कि लोग सतोगुण में आए, भगवान श्री विष्णु की, नारायण की, राम की, कृष्ण की भक्ति करें, और लोग शास्त्रों के आधार पे जिए। तो हम आज श्री चैतन्य चरितमृत शास्त्र से कुछ श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा, हमारे जीवन में कृष्ण प्रेम का प्रकट्य होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। और इसके बाद कविराज गोस्वामी कहते हैं तृतीय श्लोके रा अर्थ कैला विवरण, चतुर्थ श्लोके रा अर्थ सुन भक्त गण। चैतन्य चरितमृत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र 3 विभाग में है, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। असल में 2 विभाग हैं, आदि लीला, अंत्य लीला। आदि लीला पहले 24 साल तक, जब तक चेतना महाप्रभु पढ़े, पंडित बने, गृहस्थ में रहे, और 24 साल के बाद संन्यास लिया, तो मध्य लीला में वो 4 साल तक दक्षिण भारत का और वृंदावन का और बंगाल का भ्रमण किया, प्रचार किया, उसको मध्य लीला कहते हैं, और शेष 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे, उसको अंत्य लीला कहते हैं। तो ये ग्रंथ के आगे 14 श्लोक हैं संस्कृत में, उसके ऊपर सारा ग्रंथ आधारित है। तो कहते हैं अब आपको चौथे श्लोक का अर्थ सुनाते हैं, 14 में से चौथा श्लोक क्या है उसका अर्थ सुनाइए। चौथा श्लोक ये है संस्कृत में, अनार्पिता चरिम चिराता करुणा अवतीर्ण कलौ। अन अर्पित मतलब नहीं दिया गया था, अर्पित मतलब देना, अनार्पित मतलब नहीं दिया गया था। चिराम बहुत समय से, चिरकाल से नहीं दिया गया था। क्या नहीं दिया गया था, क्या नहीं दिया गया था, तो आगे आएगा कृष्ण प्रेम। चिरकाल से कई अवतार आए लेकिन कृष्ण प्रेम ने नहीं, धर्म स्थापना किया लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं दिया। तो कहते हैं अनार्पित चरिम चिरात कारुण्यावतीर्ण कलौ। करुणा अवतार कलयुग में हुआ। करुणा किसको कहते हैं, दया, हृदय में जिसको दया हो। करुणा का मतलब हृदय जिसका कांपता हो, किसी को दुखी नहीं देख सकता हो, वैसे करुणामयी राधा को बोलते हैं, करुणामयी राधे करुणामयी करुणा भरिते। ये श्री रूप गोस्वामी ने गाया है, राधा जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल माहिते, करुणा भरी करुणामयी करुणा भरिते। राधा रानी करुणामयी है, करुणा से भरी हुई है, और चेतना महाप्रभु राधा के भाव में आए हैं इसलिए करुणा शब्द है। वो करुणा भरा है, उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। राधा रानी करुणा करुणामयी है, तो करुणामयी अवतीर्ण कलौ समर्पयतुम। समर्पयतुम सम्यक अर्पितुम, अच्छी तरह से सबको दे दिया। सम्यक अर्पितम समर्पयतम, समर्पण किया, दिया। क्या दिया, उन्मत्त उज्जवल रसम, उन्मत्त उज्जवल रस। उन्मत्त उज्जवल रस क्या है असल में, उन्मत्त उज्जवल रसाम, असल में गोपी और कृष्ण के प्रेम को कहते हैं उन्मत्त उज्जवल रस। उन्मत्त उज्जवल रस कहते हैं गोपी के प्रेम को। जो शुद्ध प्रेम गोपियों के हृदय में कृष्ण के लिए है उसको कहते हैं उन्मत्त उज्जवल रस, और रस से रास शब्द होता है। तो ये जो प्रेम है ये कोई स्त्री का प्रेम नहीं, लड़की लड़कियों का प्रेम नहीं है, ये भगवान के शुद्ध भक्तों के हृदय में। और ये गोपियां लड़कियां नहीं है, ये राधा रानी स्त्री नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण से वाम भाग से प्रकट भगवान की शक्ति है, और माता का भगवान का रूप है। भगवान का एक पिता का रूप है, एक माता का रूप है। राधा रानी भगवान की माता का रूप है, हम कहते तुम्हें वो माता कहते हैं ना, माता राधा रानी और पिता श्री कृष्ण है। तो राधा रानी प्रकट कहां से होती है, भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट होती है। और राधा रानी अपने आप को अनेक में विस्तारित करती है गोपियों के रूप में। गोपियां हैं राधा रानी का कायाव्यूह, उनके शरीर का विस्तार है। तो भगवान कृष्ण के ही अपने अंग से उत्पन्न भगवान की शक्ति है, जो भगवान उनके साथ प्रेम का रस आस्वादन कर रहे हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया, उन्मत उज्ज्वल रसाम। वो क्या है उन्मत उज्ज्वल रस, क्या है? स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति मतलब कृष्ण भक्ति, अपनी भक्ति, और स्वभक्तिम अपनी भक्ति दी, श्रियम अपनी भक्ति का खजाना दिया। श्रियम कहते हैं, वैसे श्री कहते धन को, तो उन्होंने अपनी भक्ति का खजाना दिया, पूरा कोष दे दिया। हरि ही पूरट सुंदर ज्योति कदम संदीपिता। ये कौन है जिन्होंने दिया? हरि है। तो हरि का क्या अर्थ है? हरि का एक अर्थ है जो अपने भक्तों का दुख ताप संताप हर ले, भक्तों का कष्ट हर ले, उसको हरि बोलते हैं। और दूसरा हरि का अर्थ है प्रेम देके मन हरे, इतना प्रेम देता है कि भक्तों का मन हर लेता है। इसलिए भगवान कृष्ण को कहते हैं मनोहर। कैसा मनोहर? मुरली मनोहर, मुरली बजाकर मन हर लेता है। तो मनोहर भगवान हरि है। और हरि कैसे आए? पुरट, पुरट कहते हैं सोने को, सोने जैसे सुंदर, कांति वाले, रंग वाले। पुरट सुंदर द्युति, सोने जैसे स्वर्ण रंग में, स्वर्ण कांति के साथ आए। कदम्ब संदीपिता, कदम्ब संदीपिता, बहुत प्रकार के नाना नाना भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकाश, भक्ति के रस उनमें से प्रकट हो रहे थे। उन भक्ति के रसों को देने के लिए आए। बहुत रस कौन से देने के लिए आए? विशेष रूप से चार रस देने के लिए आए, दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो ये वो रस देने के लिए आए। कदम संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतो। अब प्रार्थना करते हैं सदा हमारे हृदय की गुफा में वो महाप्रभु स्फुरित हो, प्रकट हो, क्योंकि वो प्रकट होंगे तो कृष्ण प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा। कौन है वो? वह सचिनंदना, हे सचिनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु आप हमारे हृदय में प्रकट हुए। ये श्लोक विगत माधव नाम के नाटक में श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसके मंगलाचरण में लिखा है, उसका दूसरा ही श्लोक है। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? सची माता के पुत्र के रूप में, सचिनंदन के रूप में जो श्री गौर हरि हैं, वो हमारे हृदय के अंदर विराजमान हो जाएं, हमारे हृदय के अंदर स्फुरित हो जाएं, हृदय के अंदर उनको स्फुरित हो जाएं। और वो स्वर्ण कांति वाले हैं और कली काल में वो कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं, और जो बहुत समय से कभी नहीं दिया गया था वो कृष्ण प्रेम माधुर्य रस देने के लिए आए हैं। और आगे अब कथा को आगे बताते हुए कहते हैं कि ये कौन है चैतन्य महाप्रभु, तो उसकी भूमिका में कहते हैं पूर्ण भगवान, बोलिए कृष्णा व्रजेंद्र नंदना, पूर्ण भगवान कृष्ण व्रजेंद्र कुमार, गोलोके व्रजेरा सनित्य विहारा। तो पूर्ण भगवान कृष्ण है, पूर्ण अवतार, 16 कला संपन्न पूर्ण अवतार श्री कृष्ण है। क्या नाम से प्रसिद्ध है? व्रजेंद्र कुमार। व्रजेंद्र का मतलब नंद बाबा, व्रज के इंद्र, व्रज के राजा, तो व्रज के राजा के बेटे हैं। गोलोकेर व्रजेर सह नित्य विहार, और वो केवल ब्रज में और गोलोक में नित्य विहार करते हैं। गोलोक उनका धाम है आध्यात्मिक जगत में, और उसी धाम को धरती पे लाते हैं ब्रजमंडल के रूप में, तो वहां उनका नित्य विहार है। अब आगे कहते हैं, ब्रह्मार एक दिन ऐते हूं, एक बार ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार अवतीर्ण हया करे न प्रकट विहार। पूर्ण भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होके अपनी लीला का विहार करते हैं, अपने ब्रज विहार करते हैं, ब्रज में विहार करते हैं। एक बार तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी के 50 साल हुए, कितनी बार कृष्ण आए होंगे? एक बार नहीं आए कृष्ण, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। अब कब आते हैं वो सुन लीजिए। सत्य त्रेता द्व्यापुर कली चारे युगे जानी। हम जानते हैं चार युग है, सत्य युग है, त्रेता युग है, द्वापुर है, कली युग है। से ही चारे युगे देव्य एक युग मानी। ये चार युग को, चार युग कठे हो जाएंगे तो उसको एक दिव्य युग कहेंगे। ये चार एक दिव्य युग, इसको चोकड़ी, युगों की चोकड़ी। अब कहते हैं एकात्र चतुर्युगे एक मनवंतर। ऐसे 71 बार चार युग, जब चार युग 71 बाद घूमते हैं तो उसको एक मनवंतर कहते हैं, एक मनु का समय। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु का, मनु राज करते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक मनु का समय 71 बार चार युग बदलते हैं। इस वक्त 28वीं चतुर्युगी चल रही है ब्रह्मा जी के दिन की। कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। ये वैवस्वत मनवंतर, इस वक्त वैवस्वत मनु है, सूर्य का पुत्र जिसको भगवान ने भगवत गीता दी है, उस मनु का शासन चल रहा है। और 28वीं चतुर्युगी चल रही है। अभी 71 चतुर्युगी पूरी होंगी तब ये मनवंतर पूरा होगा, नया मनवंतर आएगा, तब नया इंद्र बनेगा, तब इंद्र दूसरा बनेगा, तब 7 ऋषि दूसरे बनेंगे। इन दोनों को चुनने के लिए एक भगवान का अवतार होगा, उसको मनवंतर अवतार कहते हैं। इससे पहले 6 मनु गुजर चुके हैं इस ब्रह्मा जी के दिन में। ये ब्रह्मा जी के दिन का मध्यकाल है। अब आगे कहते हैं 14 मनवंतर ब्रह्मार दिवस भीतर। एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु होते हैं। हम समझाने के लिए कभी कभी कहते हैं तो ऐसे है, हमारी घड़ी में देखो 12 घंटे हैं ना, तो ब्रह्मा जी की ऑफिस में घड़ी में 14 घंटे हैं, ऐसे समझ लो। हमारे एक घंटे में 60 मिनट हैं, ब्रह्मा जी के एक घंटे में 71 युग हैं, 71 बड़ा युग बदलते हैं। और हमारे एक घंटे में एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड है, और उनके एक मिनट में 4 युग हैं, 4 युग बदलते हैं, ऐसी घड़ी ब्रह्मा जी की है। तो कितना बड़ा ब्रह्मा जी का समय है बता दिए, बहुत समय है ब्रह्मा जी की, आयु बहुत लंबी है। तो अब कहते हैं वैवस्वत नाम ए सप्तम मनवंतर। ये जो अभी मनवंतर चल रहा है ये 7वां चल रहा है, वैवस्वत मनु इसका अधिपति है। 27 चतुर्युगे तहार अंतर। 27 चतुर्युग पहले बीत गए। अब कहते हैं 28 चतुर्युगे द्वापुरे शेष। 28वीं चतुर्युगी का जब द्वापुर बाकी बचा था, द्वापुर के अंतिम चरण, व्रजेरा स्थिते है कृष्णेरा प्रकाशे। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट होते हैं। अभी जो कल जो द्वापुर युग गया है, इसके अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। अभी उसको 5000 कुछ 100 साल हुए हैं तब भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ था। तो ये कहते हैं कृष्ण प्रकट ऐसे होते हैं। द्वापर युग के अंत में कृष्ण प्रकट होते हैं और कली युग के पहले ही चरण में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। प्रायः जब कृष्ण प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, उसके बाद आने वाले कलयुग में चेतना महाप्रभु प्रकट होते हैं, लेकिन हर समय हो जरूरी नहीं है, लेकिन जब कृपा करते हैं तब प्रकट होते हैं। अब कहते हैं क्यों होते हैं कृष्ण प्रकट, ये प्रश्न होता है भाई, अवतार तो और भी आते हैं, कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं? तब कहते हैं दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस चारी भावेर भक्त यत कृष्ण तार वस। कृष्ण केवल चार रसों की पुष्टि के लिए आते हैं। कौन से चार रस? दास्य रस, भगवान हमारा स्वामी है, हम उसके सेवक हैं। सखा रस, भगवान हमारे मित्र हैं, हम भगवान के सखा हैं। वात्सल्य रस, भगवान हमारे बालक हैं, हम उसके माता पिता हैं। और श्रृंगार रस, भगवान हमारे प्रेमी हैं, हम उसके प्रीतम, वो हमारा प्रेम प्रीतम है, हम उसके प्रेम करने वाले हैं। ये चार भावों को भक्तों, ये चार भावों से कृष्ण भक्तों के वश में हो जाता है, इसलिए कृष्ण आता है केवल इसी के प्रचार करने के लिए। एक शब्द में कृष्ण आता है प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए, ये चारों प्रेम के संबंध है। पांच रस हैं, आप सब लोग पांच रसों को जानते हैं, जितने भी दुनिया में जीव हैं उनका भगवान के साथ पांचों में से कोई एक रस है। चार तो अभी आपको नाम बता दिए, दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। एक रस सबसे नीचा इसमें है, उसका नाम है शांत रस। शांत रस कृष्ण के प्रेम में नहीं आता है, उससे थोड़ा बाहर है, लेकिन शांत रस का उदाहरण कौन है? शांत रस में है कौन? चार कुमार शांत रस में है, सनक आदि कुमार चार शांत रस में है, नव योगेंद्र शांत रस में है, जो बहुत बड़े महान योगेंद्र है, ये शांत रस के हैं। शांत रस में दो बातें होती, एक तो भगवान के ऊपर पूरी निष्ठा और दुनिया से वैराग, ये शांत हुआ है। ये जितने भी हैं चार कुमार हैं, दुनिया में कोई लेना देना नहीं है, और भगवत तत्व के ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास है, लेकिन एक चीज नहीं है, वो चीज आ जाए तो शांत से दास रस में चला जाए। वो चीज क्या है? ममत्व। भगवान है लेकिन मेरा है ये आए मन में, मेरा स्वामी है, मेरा सखा है, मेरा पुत्र है, ये जब तक नहीं आता है तब तक शांत रस से ऊपर नहीं जाता है। जैसे ममत्व आ गया तो दास रस हो जाएगा। इसलिए हम कई बार पूछते हैं आपसे कि कौन है कृष्ण, तो प्रायः सबका उत्तर है भगवान है, पूर्ण पुरुष भगवान है। लेकिन है भगवान है ये तो ठीक है, आपका क्या संबंध है कृष्ण से? ये दीक्षा के समय सबके नाम के पीछे दास लगा के हमारा संबंध बताया जाता है कि भगवान स्वामी है आप सेवक हो, ये हमारा नित्य संबंध है। तो ये संबंध जब तक हम भगवान को अपना नहीं मानेंगे, भगवान में ममत्व नहीं होगा, तब तक असल में हमारी भक्ति शुरू ही नहीं होती। भक्ति शुरू होती है ममत्व होने से, भगवान मेरा है, मेरा स्वामी है, मेरा सखा है, सबका होगा लेकिन मेरा है, तो भगवान में ममत्व होना चाहिए, भगवान मेरा है ये भाव आना चाहिए। तो यहां कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ये चार रस जो है ये हमको देने के लिए आते हैं। और फिर कहते हैं आगे क्या कहते हैं, दास सखा पिता माता कांता गण लैया। अब बोला ये यहां से कहां लें, दुनिया में तो मिलेंगे नहीं, इसलिए भगवान जब आते हैं तो अपने सेवकों को साथ लाते हैं, रक्तक पत्रक आदि भगवान के सेवक हैं, उनके नाम है रक्तक पत्रक, और सखा अपने मित्र साथ में लाते हैं, श्रीधामा सुधामा मधुमंगल स्तोक कृष्ण, ये भगवान के सखा हैं। पिता माता नंद बाबा यशोदा को साथ लाते हैं, और कांता गण भगवान से प्रेम करने वाले गोपी गणों को साथ लाते हैं, राधा ललिता विशाखा इंदुलेखा इन सबको साथ में लाते हैं। गण लैया व्रजे कीड़ा करे कृष्ण प्रेमा विष्ट हया, और इनके संग कृष्ण वृंदावन में बहुत प्रेम की लीला करते हैं, और उस प्रेम का प्रचार करते हैं कि आप मुझसे ये रिश्ता रख लो, मुझसे ये प्रेम, ऐसे इस भाव से जैसे ये कर रहे हैं आप भी ऐसे कर सकते हो। इसलिए भागवत सुनने का मुख्य उद्देश्य है कि कोई न कोई भगवान के भक्त के प्रेम को हम पसंद करके वैसे प्रेम करने की इच्छा करते हैं। भगवान के वृंदावन के भक्त, ब्रज के भक्त, जो भगवान के वृंदावन के गोलोक वृंदावन के भक्त हैं, जो नित्य भगवान के पार्षद हैं, उन भक्तों को कहते हैं राग आत्मिक भक्त। क्या कहते हैं? इसका मतलब वो भगवान के प्रेम से परिपूर्ण है, नित्य सिद्ध है। जो उन भक्तों के चरण चिन्हों में चलेगा, उनके पीछे चलेगा, उसको कहते हैं राग अनुगा भक्त। राग अनुगा भक्त वो है जो भगवान के निज परिकरों के चरण चिन्हों में चले। तो यहां कहते हैं ऐसे लीला करके सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब आगे कह रहे हैं यथेष्ट विहारी कृष्ण हरे अंतरधान। यथेष्ट जब तक चाहे उनकी मजा, जब उनका आनंद है तब तक विहार करते हैं। विहारी कृष्ण, वो विहारी शब्द लिखा है यहां, एक कृष्ण का प्रकट्य सब लोग हम जानते हैं, कंस के कारागृह में वसुदेव और देवकी के यहां हुआ। वो प्रकट हुआ रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में, और रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में शब्द है वह, उनका नाम है वसुदेव कृष्ण। और नंद और यशोदा के यहां कृष्ण प्रकट हुआ तीसरे चरण में रोहिणी नक्षत्र के, उसका नाम है विहारी। तो यहां बात हो रही है विहारी कृष्ण की, जो नंद और यशोदा के यहां, जो नंद और यशोदा के वहां प्रकट हुए, ये ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, ये पूर्ण भगवान है। जो वसुदेव और देवकी के यहां आए, वो चार हाथों वाला विष्णु है, वो तो युग अवतार है, वो तो पृथ्वी ने प्रार्थना की थी इसलिए आए थे। तो ये विहारी कृष्ण जो वी शब्द है, विहारी कृष्ण विहार करने वाले, रास बिहारी, बांके बिहारी, तो विहारी कृष्ण जो है ये नंदनंदन कृष्ण है, ये स्वयं भगवान पूर्ण कृष्ण है। कृष्ण करे अंतर्धान, जब इच्छा होगी तब वापस चले जाते हैं अपने धाम। अंतर्धान करी मने करे अनुमान, भगवान जब श्री कृष्ण यहां से चले गए तो ऊपर विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? चिरकाले नाही करी प्रेम भक्ति दान, बहुत समय से मैंने प्रेम भक्ति लोगों को दान नहीं किए, भगवान ऐसा विचार करने लगे। भक्ति बिना जगत तेरन नाही अवस्थान, बिना प्रेम भक्ति के जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिना प्रेम के जब, बिना भक्ति के जगत कैसा है? बेकार है। तो मैंने प्रेम भक्ति का तो बहुत समय से कृपा किया नहीं है, दान दिया नहीं है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया। तो कोई कहे कि भगवान आपके तो बड़े मंदिर है, बड़ी पूजा होती है, बड़े बड़े मंत्र पढ़े जाते हैं, तो भगवान कहते हैं सकल जगत मोरी करे विधि भक्ति, सारी दुनिया मेरी भक्ति करती है नेम के साथ, विधि विधान के साथ, बड़े घंटे बजा के, घड़ियाल बजा के ऐसे भक्ति करती है, बड़े बड़े मंत्र उच्चारण करती है। विधि भक्ति विरजे भाव पाएते ना ही शक्ति, लेकिन इस विधि वाली भक्ति से ब्रज के भाव को पाने की शक्ति नहीं है, इसमें वो शक्ति नहीं है। इसका मतलब राधा कृष्ण की कोई उपासना भी कर रहा है, बड़े नेम के साथ कर रहा है, लेकिन ब्रज भक्ति उसको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ब्रज भक्ति के लिए विधि भक्ति नहीं चाहिए, राग मार्ग की भक्ति चाहिए। भक्ति कितनी प्रकार की है? शुद्ध भक्ति तीन प्रकार की है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति का काम क्या है? भाव भक्ति को जगाना। भाव भक्ति जब पक्की हो जाएगी तो प्रेम भक्ति हो जाएगी। तो साधन भक्ति करेंगे तो भाव भक्ति जागेगी। साधन भक्ति दो प्रकार की है, एक विधि वाली साधन भक्ति, एक राग वाली साधन भक्ति। विधि वाली साधन भक्ति वैकुंठ तक ले जा सकती, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वाली लीलाओं में नहीं ले जा सकती। उसके लिए राग मार्ग की भक्ति करनी पड़ेगी। तब यहां कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि सभी विधि भक्ति तो करते हैं, लेकिन उससे उनमें इस भक्ति में यह शक्ति नहीं है कि वो ब्रज में ला सके या मेरे प्रेम को प्रकट कर सके। तो भगवान अभी आगे क्या कहते हैं, ऐश्वर्य जानिते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य स्थिल प्रेम नाही मोर प्रीत। भगवान के प्रति दो भाव है, एक है ऐश्वर्य भगवान का, जैसे द्वारका में है 16108 महल हैं, द्वारकाधीश है, बड़ा राजा की तरह रहते हैं, इसको कहते हैं ऐश्वर्य। भगवान नारायण वैकुंठ में है ऐश्वर्य, लेकिन वृंदावन में भगवान है माधुर्य। वहां भगवान को कोई भगवान नहीं मानता, वहां भगवान को सब अपना बेटा मानता है, अपना मित्र मानता है, अपना स्वामी मानता है, अपना प्रेमी मानता, कोई भगवान नहीं मानता, कोई भगवान जानता ही नहीं। तो इसको कहते हैं माधुर्य, वृंदावन में माधुर्य, द्वारका में ऐश्वर्य। तो यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐश्वर्य स्थल प्रेम नहीं मोर प्रीत। अगर बहुत बड़े मान सम्मान के साथ हाथ जोड़ के दूर भक्त खड़ा हो, भगवान आपको दूर से प्रणाम है, उससे मेरे प्रेम वो मुझे वश में नहीं कर सकता है, उसके हृदय में प्रेम नहीं आ सकता है, वो दूर से ही नमस्कार करने वाला हो जाता है। तो ऐश्वर्य वाली भक्ति मुझे ज्यादा आकर्षित नहीं करती है। अब कहते हैं ऐश्वर्य ज्ञान विधि भजन करिया वैकुंठ थाके या चतुर्विध मुक्ति पाया। अगर आप भगवान की ऐश्वर्य वाली भक्ति करेंगे, भगवान बड़े महान हैं, राजा हैं, वैकुंठ नाथ हैं, तो आपको वैकुंठ धाम मिलेगा, चार प्रकार की मुक्ति मिलेगी, स्वरूप्य मुक्ति मिलेगी, सालोक्य मुक्ति मिलेगी, सारिष्टि मुक्ति मिलेगी और सामीप्य मुक्ति मिलेगी। पांचवी मुक्ति सायुज्य भक्त नहीं चाहते, ब्रह्म में लीन होना भक्त नहीं चाहते, लेकिन ये चार मुक्तियां मिलती हैं। अब आगे कहते हैं सारिष्टि सारूप्या और सामीप्य शालोक्या साजुना सायुजा ना लाए भक्त याते ब्रह्म आइक्या। ये चार मुक्तियों के नाम बताया, बोला ये वैकुंठ में ले जाएंगी। पांचवी भक्तों को नहीं चाहिए, कौन सी ब्रह्म लीन होने वाली भक्तियों, भक्तों को मुक्ति चाहिए ही नहीं, और भक्तों को इनमें से एक भी मुक्ति नहीं चाहिए। अब कहते हैं मैं स्वयं जा रहा हूं। क्यों आ रहे हैं आप? अब कृष्ण कहां विचार कर रहे हैं, द्वापुर में जाने के बाद गोलोक में विचार कर रहे हैं। युग धर्मा परवर्तिमाऊ नाम संकीर्तन। बोला ये कैसे प्रेम जागेगा? बोला नाम संकीर्तन करेंगे तब, और ये कलयुग का युग धर्म है। तो मैं युग धर्म को स्थापित करने के लिए, युग धर्म को इनॉग्यूरेट करने के लिए मतलब उसका शुभारंभ करने के लिए मैं जाऊंगा। चारी भाव भक्ति दिया नाचाय मु भुवन। और चार भाव भक्ति के, दास्य भक्ति, सखा भक्ति, वात्सल्य और माधुर्य भक्ति देके सारे दुनिया को नचाऊंगा, प्रेम में सब दुनिया को नचाऊंगा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया। और फिर क्या हुआ? आपने करीमू भक्त भावे अंगीकार। मैं आप स्वयं भक्त बन के जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं सिखाऊंगा तो लोग को कौन सिखाएगा। मैं भक्त बन के जाऊंगा। आपनी आचरी भक्ति सिखाईमू सबारे, और अपने आचरण से मैं भक्ति करके सबको भक्ति सिखाऊंगा। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा और मैं अपने आचरण से सबको भक्ति सिखाऊंगा। आप उन्हें ना कहले धर्म सिखाऊ ना जाए, अगर आप आचरण नहीं करेंगे तो किसी को धर्म सिखा नहीं सकते। आप स्वयं हरे कृष्ण नहीं जपेंगे, दूसरे को बोलो जपो तो नहीं जपेगा। हमने बड़े बड़े कलाकारों को देखा है, बड़ा अच्छा गाते हैं लेकिन कोई उनके साथ नहीं गाता है। हमारे नए भक्त है कैसे उल्टा सीटा गाते हैं, सब दुनिया गाती है। क्यों? क्योंकि वो रोज गाते हैं। कलाकार तो सिर्फ गाता है जब स्टेज के ऊपर आता है, और जो कोई दो पैसा देता है तब गाता है। तो इसलिए अपने आचरण में अगर नहीं होगा तो दूसरे को सिखाएगा नहीं, ये भगवान कह रहे हैं। यही तो सिद्धांत गीता भागवत गाए, ये सिद्धांत गीता और भागवत में कहा है। और गीता का श्लोक एकदम, कविराज गोस्वामी एकदम गीता का श्लोक कह रहे हैं। कौन सा, क्यों कौन सा कह रहे हैं? पहले तो धर्म स्थापन, यदा यदा ही धर्म से ग्लानी भवती भारत अभ्योतान धर्म से तदात्मान सृजामी हम। और फिर कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। और फिर कहते हैं उसी देव इमे लोका न कुर्यान कर्म चेदहम संक्रस्य च कर्तास्याम उपन्याम इमा प्रजा। अगर मैं जाके नहीं सिखाऊं तो सारे लोग वर्ण शंकर हो जाएंगे, अपनी मनमानी करने लगेंगे, इसलिए मेरे को जाके सिखाना पड़ेगा। और फिर कहते हैं यद्यद आचरती श्रेष्ठ तत्तदैवत्रो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्ततो अनुवर्तते। अरे बड़ा आदमी जो प्रमाण स्थापित करता है लोग उसका अनुकरण करते हैं, तो मैं ही जाके नहीं सिखाऊंगा तो और कौन सिखाएगा। ये विचार करके भगवान कहते युग धर्म परिवर्तन है अंश है ते। युग का काम करने के लिए मैं अपने अंश को भेज देता हूं। भगवान कहते मैं पूर्ण भगवान श्री कृष्ण नहीं आता हूं। धर्म अगर युग धर्म स्थापना करना है तो किसी अंश को भेज देता हूं। अमा बिना अन्य नाये, अम्या बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। लेकिन और यार सारे युग धर्म जो अंश देते हैं ना वो ब्रज प्रेम नहीं दे सकते, दूसरे अवतार ब्रज प्रेम नहीं दे सकते। ये कृष्ण कह रहे हैं युग धर्म के लिए तो कई बार मैं अवतार लेता हूं, धर्म स्थापना तो करके आता हूं, लेकिन धर्म स्थापना वाला मेरा अंश कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता, ब्रज प्रेम नहीं दे सकता। ये कह के कह रहे अब सब संत अवतार भवत, हजारों अवतार है संत अवतार भवत। पंकज नाभस्य सर्वतो भद्रा, पंकज नाभ का मतलब भगवान विष्णु, जिसकी नाभि से कमल निकला, जिसके ऊपर ब्रह्मा निकला, तो विष्णु का नाम है पंकज नाभ। और कैसे सर्वभद्र सर्वत्र, ये सब सबका कल्याणकारी अवतार है, अनंत अवतार है, हजारों अवतार हैं भगवान विष्णु के, सबका कल्याण करते हैं। कृष्णाद अन्य को वा लतास्त्व अपि प्रेम दो भवती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अलावा शरणागत भक्तों को कृष्ण प्रेम नहीं मिलता, सब में ब्रज प्रेम नहीं मिलेगा दूसरे किसी से, ये लिखा है। कृष्ण के अलावा कैसे ये संभव है? लतासु जिन्होंने भगवान के चरणों का शरण लिया है तो वो कोई प्रेम नहीं दे सकता, ये लघु भागवत अमृत में श्लोक है, बिलो मंगल ठाकुर ने गाया है। अब भगवान क्या निर्णय ले रहे हैं, ये निर्णय लेके आज की कथा को विराम देंगे, कल से यहां से ही कथा आगे चालू रहेगी चेतन महाप्रभु के प्रकट्य की। तहाते आपन भक्त गणे करी संगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने निज परिकरों को साथ लिया। पृथ्वी ते अवतरे करीमु नाना रंगे, और पृथ्वी के ऊपर भांति भांति के भक्तों को सांग लेकर और लीला करने के लिए अवतार लिया। क्या अवतार लिया? एते भावी कली काले प्रथम संध्याए, कली काल की प्रथम संध्या में अवतीर्ण हैला कृष्ण आपनी नादियाए, स्वयं कृष्ण नादिया में दोबारा प्रकट हुए कली युग के प्रथम पहर में, प्रथम संध्याए। और कैसे थे ये जो प्रकट हुए? चैतन्या सिंहेर नवदीपे अवतार, सिंह शेर चैतन्या सिंह, चैतन्य सिंह नवदीप में अवतार हुआ, सिंह ग्रीवा उनका ग्रीवा कहते हैं गले को, शेर जैसा ग्रीवा, सिंह वीर्य शेर जैसा उनका शक्ति, सिंहेरा हुंकार और सिंह की तरह वो गजगौर करने वाले, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौरंगा गौरंगा गौरंगा। तो यहां हमने 30 श्लोक पढ़े हैं और कल 31 श्लोक से आगे इसी का पाठ चालू रखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार की ये भूमिका है कि चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतार लेकर आते हैं, युग धर्म संकीर्तन का स्थापना करने के लिए आते हैं, कृष्ण प्रेम देने के लिए आते हैं। तो आप सबका धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, क्योंकि आज शास्त्र से पढ़ रहे हैं, श्लोकों को जैसे है पढ़ रहे हैं, और ये जानकारी के लिए और आपके हृदय में कृष्ण प्रेम को जगाने के लिए कर रहे हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो पूछिए। हाँ प्रभु जी, वो भगवान का बस ध्यान करते हैं, ब्रह्म आनंद में रहते हैं, लेकिन कुमारों के ऊपर तब कृपा हुई जब वो वैकुंठ में गए और भगवान के चरणों की तुलसी को चंदन का सूंघा, तो उनके हृदय में भक्ति के प्रेम का भाव जागृत हो गया। लेकिन है शांत भाव का उदाहरण, ममत्व नहीं है। अभी उनके अंदर भाव है, भागवत कथा उन्होंने नारद को सुनाई, भागवत कथा करने के बाद उनके प्रेम हो गया, लेकिन उदाहरण उस उतना बड़ा स्तर है कि शांत रस कोई सामान्य नहीं है। और कोई प्रश्न?
ध्यान जो है वही शांत रस है, जो ध्यान योग है वही शांत रस है।
ज्ञान योग असल में ज्ञान है सतोगुण में, सतोगुण प्राकृतिक है तो प्रकृति के अंतर्गत है, भक्ति तीनों गुणों से परे है। तो ज्ञान योग जो है सतोगुण की वृत्ति है, और ये इनका मुख्य लक्ष्य होता है भगवान को ब्रह्म के रूप में जानना, कि भगवान प्रकाश है, और इनका लक्ष्य होता है उस ब्रह्म में लीन होना। ज्ञानी भगवान को ब्रह्म जानता है, ज्ञान सतोगुण में होता है, और उनका लक्ष्य ब्रह्मलीन होना होता है। और प्रायः इनको कहते हैं सांख्यवादी, ज्ञानियों को सांख्या दर्शन वाले कहते हैं, और ये सन्यासी प्रायः ज्ञानी होते हैं। और इसके विपरीत भक्ति तीनों गुणों से परे है, भक्ति का लक्ष्य भगवान के प्रेम की प्राप्ति है, भगवान के धाम में भगवान के सेवा करना है, और ये भक्ति योग का मार्ग है जो योग की परम सिद्धि है। हाँ जी,
तो आपने जैसे बताया कि हम भगवान की अगर राजा विराज की तरह रिस्पेक्ट से पूजा, राजा विराज की पूजा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उनको वैकुंठ ले जाएगी, गोलोक की भक्ति हमको नहीं मिल सकती, गोलोक व्रत की भक्ति। तो हम लोग अभी जो मंदिर बनाते हैं, तो हम मंदिर बना के उसी तरह से भगवान की पूजा करते हैं।
हमारी जो मंदिर की पूजा पद्धति है वो पंचरात्र विधि से है, और पंचरात्र नारद की विधि जो है उसमें असल में भगवान की पूजा लक्ष्मी नारायण की तरह होती है। वो पूजा विधि विधान से होती है और बड़े वैभव से होती है, लेकिन हमारा जो साधन है वो भागवत मार्ग का है। जो हम भक्ति करते हैं वो भागवत मार्ग, हम दो मार्ग के ऊपर चलते हैं। हमारी विग्रह की पूजा मंदिर के अंदर पंचरात्र विधि से वैकुंठ के भाव से होती है, और हमारी भक्ति जो है वो भागवत मार्ग से होती है, और इस भक्ति में भागवत के अंतर्गत हम रागानुगा साधन को, रागानुगा साधन शुरू होता है निष्ठा के बाद। भक्ति जब तक निष्ठा तक पहुंचती है उसके बाद रागानुगा साधन शुरू होता है। भक्ति के पांचवा स्तर है निष्ठा, आदो श्रद्धा अथ साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। निष्ठा के बाद कोई राग मार्ग के साधन में जा सकता है। राग भी साधन भक्ति, साधन भक्ति दो प्रकार की है, राग मार्ग की भक्ति और वैधि भक्ति। तो हम जो भक्ति करते हैं वो भागवत मार्ग है, उसमें राग मार्ग है, और जो पूजा करते हैं वो पंचरात्रि विधि में ना लक्ष्मी नारायण के भाव से करते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, श्री गौरंग महाप्रभु की। गौरंग महाप्रभु आविर्भाव पूर्व संध्या काल की। हरे कृष्ण।